पृष्ठ संख्या 32, शीर्षक है मानव जीवन में धर्म का स्थान। मैक्स मूलर ने कहा है, धर्म का मानव जीवन में क्या स्थान है? इसका उत्तर बार बार दोहराई जाने वाली कुछ युक्तियों से मिल सकता है। मनुष्य का इतिहास धर्म का इतिहास है। पृष्ठ संख्या 33, कामटे ने कहा है, संपूर्ण अस्तित्व धर्म के अंतर्गत है और धर्म का इतिहास मानव विकास के संपूर्ण इतिहास को चित्रित करता है। एक महत्वपूर्ण उक्ति यह भी है कि मनुष्य का सच्चा अध्ययन स्वयं मनुष्य है, परंतु एडवर्ड के शब्दों में मनुष्य का अध्ययन कभी भी पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें धर्म का अध्ययन न सम्मिलित किया जाए, क्योंकि मनुष्य के इतिहास में अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो धर्म की अपेक्षा अधिक व्यापक, प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण हो। प्रोफेसर एडवर्ड ने यह भी ठीक ही कहा है कि धर्म के प्रति लोगों की व्यक्तिगत धारणा या मनोवृत्ति चाहे जो भी रही हो, परंतु मानव जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे कोई नहीं अस्वीकार कर सकता। सचमुच धर्म विश्व में हर तरह से बहुत बड़ी चीज है। मानव के अनुभवों का सर्वेक्षण करने से पता चलता है कि आदिकाल से लेकर अब तक धर्म मनुष्य के जीवन और इतिहास में प्रमुख रहा है। धर्म चाहे आदिम रूप में रहा हो, चाहे विकसित रूप में हो, सदैव से मानव जात के जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। इसी से यह उक्ति सही प्रतीत जान पड़ती है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। वैसे एक ओर रोटी जीवन यापन की प्रमुख समस्या है और मनुष्य का सारा प्रयास इसकी प्राप्ति में लगा हुआ है, परंतु दूसरी ओर मनुष्य रोटी की प्राप्ति के पश्चात पशु की तरह शांत नहीं बैठ जाता। वह शारीरिक सौख्य और ऐश्वर्य के रहते हुए भी आत्मिक संतोष के लिए व्यग्र रहता है। वह अपनी अपूर्णता की छटपटाहट को पूर्णता में पहुंचाकर दूर करना चाहता है। इसीलिए मनुष्य पशु से भिन्न है। इस भिन्नता का कारण धर्म है। धर्म मनुष्य के विवेक में अनुस्यूत है। मानव चेतना में धार्मिक चेतना समाहित है। इसलिए मनुष्य बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता। धर्म का अनुसरण न करने वाले धर्म की आलोचना कर सकते हैं, परंतु धर्म से छुटकारा पाना संभव नहीं है। इसी से धर्म की अनिवार्यता सिद्ध होती है। मानव जीवन में धर्म के स्थान का निर्धारण हम दो रूपों में कर सकते हैं। प्रथम है धर्म की जीवन में उपयोगिता। द्वितीय है धर्म की अनिवार्यता को सिद्ध करके। अगला शीर्षक है अ धर्म की उपयोगिता। इसके अंतर्गत पहला शीर्षक है धर्म प्रगति और प्रेरणा का स्रोत है। धार्मिक चेतना में निहित ज्ञानात्मक पहलू के कारण धर्म बुद्धि पर आधारित है। बौद्धिक विवेचन, स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक विश्लेषण के कारण ही धर्म द्वारा सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रगति संभव हुई है। धर्म शुभ तथा आनंद का प्रेरक स्रोत है। शीर्षक है आक्षेप। धर्म के विरुद्ध यह आक्षेप किया जाता है कि विश्व में धर्म के कारण ही अशांति, आंदोलन, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता देखी जाती है। इसका इतिहास ही प्रमाण है। धर्म मानव प्रगति में सदैव बाधक रहा है। अगला शीर्षक है निराकरण। इस आक्षेप के उत्तर में कहा जा सकता है कि मानव में निहित कुप्रवृत्तियां इतनी शक्तिशाली रहती हैं कि यदि उनको अनुशासनबद्ध और परिमार्जित नहीं किया जाएगा तो अवश्य ही उनके कारण अशांति उत्पन्न होगी। वासनाओं की परिधि में घिरे रहने से मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता। वह अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से जकड़ा रह सकता है। मनुष्य की भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण ही विश्व में अनेक बुराइयां दृष्टिगत होती हैं। अतः इन बुराइयों का कारण धर्म नहीं है। प्रगति का अर्थ अनुशासनबद्धता है। धर्म एक अनुशासन है। मानव जीवन जब भी अनुशासन में नहीं रहेगा, प्रगति संभव नहीं होगी। अनुशासन विहीन प्रगति उच्छृंखलता है। वास्तव में धर्म तो आंतरिक सौंदर्य, शुभ और आनंद की प्राप्ति में प्रेरणा प्रदान करता है। पृष्ठ संख्या 34। शीर्षक है दूसरा, धर्म द्वारा मानव में शक्ति संचार होता है। मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने को अपूर्ण और निसहाय पाता है। ऐसी स्थिति में वह किसी पराशक्ति में विश्वास रखकर अपने अंदर शक्ति और पूर्णता का अनुभव करता है। अगला शीर्षक है आक्षेप। धर्म के कारण मनुष्य कर्म क्षेत्र में निष्क्रिय सिद्ध हुआ है। ईश्वर और भाग्यवाद की आड़ में संन्यासवादी प्रवृत्ति की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप निराशावाद, अगति तथा अव्यवहारिकता की वृद्धि हुई है। अतः यह कहना असत्य है कि धर्म द्वारा मानव में शक्ति संचार होता है। अगला शीर्षक है निराकरण। उपर्युक्त आक्षेप इसलिए निरर्थक सिद्ध होता है कि विश्व का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो मनुष्य को निष्क्रिय होकर बैठ जाने का उपदेश देता हो। सभी धर्म जीव के कर्म को ईश्वर के आदेश रूप में घोषित करते हैं। कर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों ही रूपों में संपादित किए जा सकते हैं। इन दोनों मार्गों में ही व्यक्ति ईश्वर की सहायता और शक्ति का अनुभव करता है। इतना अवश्य है कि किसी भी मार्ग की अतिशयता धर्म को अवश्य कलंकित करती है। यदि प्रवृत्ति मार्गी में स्वार्थ वित्त की अधिकता हुई तो वह लोलुप, संग्रही, स्वार्थी और दुराचारी हो सकता है, और यदि निवृत्ति मार्गी में अनासक्त भाव के स्थान पर निष्क्रियता आ गई तो वह निठल्ला, कोरा भाग्यवादी और झूठे संन्यासवाद के नाम पर अकर्माण्य तथा अव्यवहारिक हो सकता है। इसमें धर्म का दोष नहीं। धर्म व्यक्ति को सशक्त करता है न कि अशक्त। अगला शीर्षक है तीसरा, धर्म की सामाजिक उपयोगिता। वह धर्म ही है जो युगों से मानवता की सेवा कर रहा है, इतिहास इसका प्रमाण है। धर्म की शक्ति का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, सामाजिक जीवन के लिए भी है। धर्म से अनुप्राणित और ईश्वरीय चेतना से अभिभूत समाज के विभिन्न व्यक्ति समाज में समता और सहयोग की स्थापना करते रहे हैं। वस्तुतः समाज की उचित स्थापना तभी हो सकती है जबकि समाज के आदर्श में यह तथ्य समाविष्ट हो कि सभी व्यक्तियों में एक सत्ता अनुस्यूत है। इसी के आधार पर समाज में प्रेम की अजस्त्र धारा प्रवाहित हो सकती है। शीर्षक है आक्षेप। निःसंदेह धर्म समाज के निर्माण और विकास में सहायक हुआ है, परंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घातक, विप्लवकारी एवं विघटनकारी भी सिद्ध हुआ है। अनेक हिंसात्मक कार्य, युद्ध और संकुचित विचारों का प्रादुर्भाव धर्म के कारण ही हुआ। सांप्रदायिकता की आग इसी से प्रज्वलित हुई है। शीर्षक है निराकरण। इस आक्षेप के विरोध में ईओ जेम्स की उक्ति उद्धृत की जा सकती है कि प्रत्येक संकट की बेला में धर्म ही वह शक्ति है जो व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर उत्पन्न असंगठन और विरोध को दूर करके एकता तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करती है तथा मानव जीवन और चरित्र को पवित्र करती है। बेंटविच ने धर्म को जातीय संगठन रूपी भवन की नींव तथा राजनीतिक जीवन का सीमेंट कहा है। इतिहास साक्षी है कि विश्व समाज की रचना और विकास में धर्म कितना सहायक सिद्ध हुआ है। यदि धर्म के नाम पर युद्ध, हिंसा एवं विघटन हुआ है तो यह स्वस्थ धर्म का लक्षण नहीं कहा जा सकता। पृष्ठ संख्या 35। वास्तविक धर्म तो मानव विरोधी प्रवृत्तियों यथा हिंसा, घृणा, कलह आदि की सदैव से निंदा करता है और इन प्रवृत्तियों के स्थान पर दया, क्षमा, प्रेम, सहयोग, सेवा और उपकार की भावना पैदा करता है। अगला शीर्षक है बिंदु चौथा, धर्म साधन तथा साध्य मूल्य है। जब धर्म का उपयोग उच्चतम मूल्यों की प्राप्ति या आत्मलाभ के लिए साधन के रूप में किया जाता है तब यह व्यवहारिक रूप से मूल्यवान सिद्ध होता है, परंतु जब यह स्वतः उच्चतम मूल्य होने के कारण साध्य के रूप में प्राप्त किया जाता है तो आंतरिक या साध्य मूल्य के रूप में हो जाता है। साधना के प्रारंभ में धर्म व्यवहारिक मूल्य का स्थान ग्रहण करता है और साधना के अंत में वही आंतरिक मूल्य के रूप में अनुभूत होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में धर्म का उद्देश्य न सिर्फ सत्य है, न अच्छाई, न सौंदर्य और न इन सब का मिश्रण, बल्कि उसका उद्देश्य ईश्वर है जिसमें वे सब मूल्य तो निहित है ही, साथ में ही वह इनसे ऊपर भी है। अगला शीर्षक है आक्षेप। धर्म में उपयोगिता की दृष्टि से वास्तव में कोई मूल्य निहित नहीं कहा जा सकता। धर्म तो नैतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की दृष्टि से विरोधी ही सिद्ध होता है, क्योंकि धर्म में अनेक अवांछनीय तत्व देखे जाते हैं। धर्म प्रतिक्रियावादी है और घृणा की प्रवृत्ति का उद्रेक करता है। शीर्षक है निराकरण। ऐसा आक्षेप संकुचित दृष्टिकोण के कारण ही किया जाता है। उपयोगितावाद को महत्व देने वाले ही धर्म में किसी मूल्य की गंध नहीं पाते। सीमित और संकुचित दृष्टिकोण का ही फल है कि विभिन्न समयों में विभिन्न धार्मिक नेता और स्वतंत्र और प्रगतिशील विचारक प्रतिक्रिया तथा घृणा के शिकार हुए हैं। क्राइस्ट, मोहम्मद साहब तथा गांधी इसके उदाहरण हैं। फिर आज की बदलती हुई आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां जीवन के मूल्यों के प्रति विद्रोह करने के लिए जितनी सक्रिय हैं उतनी और कोई नहीं। आज की नवीन पीढ़ी तथा धार्मिकता से अनभिज्ञ परिवार अपनी परिस्थितियों के कुढ़न से संघर्ष कर रहा है। उसकी दृष्टि में मूल्य उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता जितना संकट के समय में जीवन रक्षा। अतः यदि उनको धर्म में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की झलक न मिले तो कोई आश्चर्य और दुख की बात नहीं है। वैसे धर्म तो स्वतः में परम शुभ तथा मूल्यवान है। अगला शीर्षक है, बिंदु पांचवा है, धर्म द्वारा समता की स्थापना। धर्म द्वारा समाज में अस्थाई समता की स्थापना की जाती है। अव्यवस्था, अशांति एवं उपद्रव वही देखने में आता है जहां धार्मिकता के आधार पर प्रेम, सौहार्द और संतोष की धारा नहीं प्रवाहित होती है। अभाव संतोष से दूर किया जा सकता है और इसका पाठ धर्म ही सिखलाता है। शीर्षक है आक्षेप। बहुधा यह आक्षेप किया जाता है कि धर्म ने समाज में वर्गवाद उत्पन्न किया है। ईश्वर और धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण किया गया है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने धर्म को गरीबों का अफीम कहा है। पृष्ठ संख्या 36। शीर्षक है निराकरण। इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक युग में साम्यवाद की विचारधारा से लोग बड़े ही प्रभावित हुए हैं और समता के अभाव से पीड़ित होकर फ्रांस की क्रांति तथा मार्क्स के दर्शन का आतंक सामने आया। परंतु वास्तविक समानता का फल कहाँ तक लक्ष्य हो सका है, वह तो हमारे बौद्धिक दृष्टिकोण से एक सस्ते राजनीतिक नारे के रूप में ही रह गया जान पड़ता है। वैज्ञानिक विश्लेषण से यही प्रकट होता है कि इस विश्व में किसी प्रकार की पूर्ण समता नहीं है। हाँ, निसंदेह एक दूसरे सतह पर विश्व में सर्वत्र पूर्ण समता है। हमारा अर्थ है आध्यात्मिक सतह से, जिसे आध्यात्मिक उपलब्धि हो गई है वह सबको एक ही दृष्टि से देखता है। फिर वह सबको अपने में और अपने को सब में देखने लगता है। यह केवल मानव जाति में ही समता की दृष्टि नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समरसता है। परंतु इस प्रकार की स्थिति धर्म के आंतरिक मूल्य को प्राप्त करने के पश्चात ही आ सकती है। उसके बिना हम किसी भी प्रकार की समता की स्थापना नहीं कर सकते। अगला शीर्षक है छठवां, धर्म की मनोवैज्ञानिक उपयोगिता। साधुता स्वयं अपना साध्य है। धर्म द्वारा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाज को लाभ होता है। हृदय की कोमलता, शांति तथा मधुरता धर्मानुसरण से ही प्राप्त होती है। प्रेम तथा आदर की भावना भी उत्पन्न होती है। धर्म से उच्चाति उच्च आदर्शों की प्राप्ति तथा समाज, देश और विश्व में शांति उत्पन्न करने के लिए बलिदान की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। विश्व बंधुत्व की भावना धर्म से उत्प्रेरित समता के द्वारा ही प्राप्त होती है। मित्रता तथा सेवा की भावना, साथ के जीवों के प्रति दया का प्रवाह, त्याग तथा सहिष्णुता धर्म की ही देन कही जा सकती है। इससे व्यक्ति के मस्तिष्क को जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उससे समाज लाभान्वित हुए बिना नहीं रहता। अगला शीर्षक है सातवां है नैतिकता की दृष्टि से धर्म की उपयोगिता। धर्म का प्रभाव संक्रामक होता है। जब किसी साधु व्यक्ति को दूसरों का उपकार करते देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। धर्म हमारे अंदर परोपकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। अत्याचारी के व्यवहार का अनुकरण हम नहीं भी कर सकते हैं, परंतु सद आचरण को देखकर हमारे अंदर उस ओर बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। प्लूटार्क ने ठीक ही कहा है कि धार्मिक व्यवहार की हम जहां प्रशंसा करते हैं, वहां उसके अनुकरण की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। कर्तव्य परायण पुरुष तथा रहस्यवादी के व्यवहारों में अंतर यही है कि सामान्य रूप से हम सामाजिक तथा राजनीतिक दंड विधानों के भय से कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, परंतु साधु तथा रहस्यवादी स्वेच्छा से कर्तव्य पालन करते हैं और अन्य लोगों में भी स्वेच्छा से कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न करने की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। अगला शीर्षक है बिंदु आठवां है धर्म से लोकोपकार, आत्मपूर्णता तथा व्यक्तित्व का संकलन होता है। बुद्ध, क्राइस्ट, मुहम्मद प्रभृति धार्मिक महापुरुषों का जीवन लोकोपकार का ज्वलंत उदाहरण है। वे नैतिकता, न्याय, प्रेम तथा सहयोग का जो पाठ सिखा गए, वह विश्व इतिहास में युगों तक अमिट रहेगा। व्यक्ति धार्मिक आचरण द्वारा आत्मपूर्णता प्राप्त करता है। बुद्ध का निर्वाण तथा अन्य धार्मिक महापुरुषों का मुक्ति बोध आत्मपूर्णता की वास्तविक स्वरूप है। पृष्ठ संख्या 37। यही नहीं, धर्म से पार्श्विक वृत्तियों का परिमार्जन एवं शोधन होता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। यही देवत्व ही मनुष्य का सच्चा संगठित व्यक्तित्व है। भक्त अपने आराध्य के गुणों को जीवन में उतार कर पूर्णता को प्राप्त होता है। तभी पॉल कहते हैं, अब मैं नहीं वरन ईसा मुझ में साकार होता है। भक्त तत्त्वमसि का बोध करता है। अगला शीर्षक है, नवा है, धर्म से सुख का प्रसार होता है। मानव जीवन में सुख का प्रसार धार्मिकता पर ही अवलंबित है। स्टेस ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है कि बुद्ध तथा ईसा जैसे नैतिक प्रतिभा संपन्न महापुरुषों की बड़ी खोज यह थी कि स्वार्थपूर्ण जीवन सुखी जीवन नहीं होता और अपने को सुखी बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम दूसरों के सुख के लिए प्रयत्न करें। ऐसा क्यों है, ऐसा कहना कठिन है। मनुष्य सुखी नहीं हो सकता जब तक उसके चारों ओर सब सुखी न हो। कारण यह है कि व्यक्ति संपूर्ण मानवता से सशक्त है। मानव जात के सुख में ही उसका सुख है। अगला शीर्षक है, दसवां है, सांस्कृतिक विकास और विश्व शांति में धर्म की उपयोगिता। विकसित धर्मों तथा धर्म के वैज्ञानिक विवेचनों से यह सिद्ध हो चुका है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वैज्ञानिक विकास के साथ धर्म का नाता होने पर विश्व की संस्कृति का विकास मंगलमय सिद्ध हो सकता है। विज्ञान मानव ऐश्वर्य की वृद्धि कर सकता है, परंतु धार्मिकता के आधार पर ही मानव संस्कृति में मानवता का प्रवेश हो सकता है। ऐसी ही संस्कृति विश्व शांति की स्थापना कर सकती है। जैन बौद्ध तथा ईसाई धर्म के पंच सूत्र तथा शैलोपदेश विज्ञान के साथ मनुष्य को शांति और प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। अगला शीर्षक है, ब धर्म की अनिवार्यता। धर्म की उपयोगिता से ही सिद्ध होता है कि मानव जीवन में धर्म की अनिवार्यता है। धर्म की अनिवार्यता का यह अर्थ नहीं है कि सभी को अनिवार्यतया धार्मिक ही होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि धर्म की अनिवार्यता बुद्धि और विचारों में अप्रत्यक्ष रूप से निहित है। धर्म में हम एक महान शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं। यह महान शक्ति हमारे व्यक्तिगत राग द्वेष स्वार्थ आदि से परे है। वह शक्ति असीमित है और हम सीमित हैं। वह निरपेक्ष है और हम सापेक्ष हैं। उसमें विश्व जनीनता है और हम में व्यक्तिगतता है। उसमें व्यापकता है, हम में संकुचितता है। उस महान की शक्ति स्वीकार करने के लिए हम बाध्य हैं। केयर्ड के अनुसार धर्म की अनिवार्यता का यह अर्थ है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे अपने सीमितपन और सापेक्षता का ज्ञान है और सर्वदा अपनी सीमितता और सापेक्षता से ऊपर उठना चाहता है तथा निरपेक्ष और असीम से संबंध स्थापित करना चाहता है। वह मनुष्य के स्वभाव का एक अनिवार्य तत्व है कि वह अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहना चाहता, बल्कि वह जो कुछ है उससे अधिक होना चाहता है। मनुष्य को अपने लक्ष्य का ज्ञान है। केयर्ड के अनुसार विचार की क्रिया में ही धर्म का तत्व निहित है। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति धर्म विरोधी है वह भी बड़ा धार्मिक है, वह धर्म से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। उसे अनिवार्यतः धर्म के विषय में विचार करना ही पड़ेगा। केयर्ड ने धर्म विरोधी विचार का यथा भौतिकवादी तर्कों का खंडन करके भी धर्म की अनिवार्यता सिद्ध की है। पृष्ठ संख्या 38। धर्म की अनिवार्यता मानव चेतना में निहित तत्वों के ही आधार पर सिद्ध होती है। यदि व्यक्ति परंपरावादी धर्मों को स्वीकार नहीं करता तो उसके स्थान पर किसी न किसी मत या विशिष्ट सिद्धांत को तो स्वीकार करता ही है। यद्यपि वह धर्म का स्थान नहीं ग्रहण कर सकते, उदाहरण के लिए मानवतावाद आधुनिक युग में अधिक लोकप्रिय हो रहा है, परंतु यह न तो धर्म का स्थान ले सकता है और न धर्म का विरोध कर सकता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो धर्म के आवश्यक तत्व कहे जा सकते हैं। सारांश यह है कि किसी भी रूप में मनुष्य अनिवार्यतः धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। धर्म की अनिवार्यता के उपयुक्त कारण मनुष्य की आंतरिक वृत्ति में पाए जाते हैं, परंतु कुछ कारण बाह्य परिवेश में भी हैं जिनसे धर्म की अनिवार्यता सिद्ध होती है। और यह भी सिद्ध होता है कि मानव जीवन में धर्म का स्थान है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में, आज के युग में जबकि विज्ञान के विकास द्वारा राष्ट्रों की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं खंड खंड हो रही हैं और विश्व एकता की ओर बढ़ रहा है, तो इससे धर्म की अनिवार्यता का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि धर्म हमें इस विश्व की एकता की जंजीर को और भी दृढ़ करने के लिए आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है। विज्ञान और दर्शन के ज्ञान द्वारा भी एकता की प्राप्ति हो रही है, परंतु इनमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद बना ही रहता है। धर्म में यह भेद समाप्त हो जाता है। एक ही आराध्य होने से संपूर्ण विश्व से हम एक आध्यात्मिक संपर्क स्थापित करते हैं। इसलिए सिद्ध है कि संपूर्ण विश्व की आध्यात्मिक एकता के लिए धर्म अनिवार्य है।